नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा।
और मैं हूं विनीता ठाकुर।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 नवंबर का अंक। दोस्तों, जनजातीय आबादी भले ही छोटी है, लेकिन ये देश भर के दूर दराज इलाकों में फैली हुई है। केंद्र सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है, ताकि विकास का फायदा इनके गांवों, पहाड़ियों और जंगलों में बसे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। पिछले 10 वर्षों में चाहे यातायात के साधन हो, बिजली, पानी और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, या लगभग 24 लाख जनजातीय परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि और आजीविका की सुरक्षा दिलाना हो, या फिर युवाओं की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार, एकलव्य विद्यालय जैसी विशेष व्यवस्थाएं, और प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए जनजातीय विकास को नई दिशा दी है। इस 15 नवंबर को देश 5वां जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन भी हो रहा है। इसीलिए जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियां इस बार हमारी आवरण कथा बनी है।
इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2025 का ISSA पुरस्कार फ्लैगशिप के तहत 2 नवंबर 2018 को MSME के लिए शुरू की गई। 12 घोषणाओं से बीते 7 वर्ष में उद्योग क्षेत्र में हुई उन्नति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइट पेज पर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और बैक कवर पर आदि शंकराचार्य वासुदेव बलवंत फड़के की 179वीं जयंती पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।
दोस्तों, भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है। युवाओं का सामर्थ्य और कौशल बढ़ता है तो राष्ट्र मजबूत होता है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को पीएम सेतु योजना समेत 62,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उपहार दिया। ये योजना देशभर के 1,000 ITI संस्थानों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, ताकि युवाओं को कौशल, उद्योग आधारित शिक्षा और रोजगार सृजन के अधिक अवसर मिलें। भारत ज्ञान और कौशल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये कौशल और ज्ञान देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाता है तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा रही है कि जब तक हम श्रम और हुनर को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, उन्हें सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शायद वो अपने आप को कम महसूस करेंगे। यही कारण है कि अब राष्ट्र श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते को जीवंत कर रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं।
जब कौशल बढ़ता है, देश आत्मनिर्भर होता है, निर्यात बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे, लेकिन आज भारत टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ रहे हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों से लेकर MSME में अभूतपूर्व रोजगार का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सब का बड़ा लाभ युवाओं को और विशेषकर ITI के कुशल युवाओं को हुआ है। पीएम सेतु योजना भविष्य के उद्योगों के लिए करियर लॉन्चिंग हब तैयार करने में मदद करेगी। इसमें अपग्रेडेड ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन योजना में देश भर के 1,000 सरकारी ITI का हब एंड स्मोक मॉडल में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं। प्रत्येक हब औसतन 4 स्पोक से जुड़ा रहेगा, जिसमें उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेंडों, डिजिटल लर्निंग सिस्टम्स और इन्क्यूबेशन सुविधाओं से लैस क्लस्टर बनेंगे। उद्योग जगत के प्रमुख साझेदार बाजार की मांग के अनुरूप परिणाम आधारित कौशल विकास को सुनिश्चित करते हुए इन समूहों का प्रबंधन करेंगे। हब में इनोवेशन केंद्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सेवाएं होंगी। प्रथम चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आईटीआई में अब आईटी, ड्रोन, ईवी, हेल्थ टेक, ग्रीन एनर्जी जैसे अन्य कोर्स भी शामिल हैं। पीएम सेतु की सभी जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। पीएम सेतु योजना दुनिया की कौशल मांग से कैसे भारत के युवाओं को जोड़ेगी, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
साथियों, हमारी आईटीआईज इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई। देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल लगेगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी।
दोस्तों, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब अन्नदाता सशक्त और खुशहाल हों, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं दाल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। ये मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। ये मिशन रोजगार सृजन भी करेगा। मिशन का उद्देश्य दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। मिशन की एक प्रमुख विशेषता पीएम आशा की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है, जिनकी जानकारी पत्रिका में शामिल है।
देश में सकल घरेलू उत्पाद में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 35% और निर्यात में 45% से अधिक के योगदान के साथ एमएसएमई सेक्टर भारत के वैश्विक व्यापार के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण भाग ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। देश की उन्नति के इस मार्ग को और मजबूती मिली 2 नवंबर 2018 को, जब एक साथ 12 घोषणाओं के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के सपनों को नया विस्तार दिया। भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में बसे वे करोड़ों लोग हैं जो सीमित संसाधनों में भी अपने हुनर से रोजगार, उत्पादन और नवाचार की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के प्रयासों का संगठित स्वरूप है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME। इसलिए बीते 11 साल में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनके जरिए न सिर्फ ऋण और बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा मिली है बल्कि तकनीक के विस्तार सहित कारोबार में आसानी से लेकर नियमों के जाल से भी MSME को मुक्ति मिली है। अब तक 6.63 करोड़ पंजीकृत MSME और बीते 5 वर्षों में ही करीब 29 करोड़ लोगों को रोजगार का रिकॉर्ड आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि इन 7 वर्षों में केंद्र सरकार की पहलों का कितना असर इस सेक्टर पर हुआ है। MSME पर एक विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल की गई।
दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच साझेदारी की जीवंत कड़ी वहां बसे 18 लाख से अधिक भारतीय हैं, जो दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत कर रहे हैं। इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के कुछ ही महीने बाद अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत यूके साझेदारी में नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक बनी। भारत यूके द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार 56 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आने वाले समय में व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा की। ये भविष्य की भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत ब्रिटेन संबंध और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर विस्तृत रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित है।
बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो और कृषि पर ज्यादा निवेश हो। करीब 6 गुना बजट, 2.5 गुना से अधिक उर्वरक सब्सिडी और फसल की बुवाई से पहले से लेकर बाजार तक साथ वाली क्रांतिकारी योजनाएं अन्नदाताओं के प्रति केंद्र सरकार की इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण बनी है। इस बार किसानों को प्राथमिकता की साक्षी बनी राजधानी नई दिल्ली जब कृषि धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की सौगातें दी।
भारत की विकास यात्रा में खेती और किसानी हमेशा से प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के अन्नदाताओं की विकास यात्रा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन रिफॉर्म्स के साथ नई शुरुआत और उनसे मिले परिणामों का भी जिक्र किया, जिसे पत्रिका में विस्तार से पढ़ा जा सकता है।
समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर रहे लोगों को सुलभ न्याय मिले, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। 9 नवंबर 1995 को लागू विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम इसी दिशा में एक प्रयास था। निःशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता के लिए जागरूक रहने के उद्देश्य से इसी दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में शुरू टेली लॉ और न्याय बंधु जैसे प्रयास लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की ओर सबसे बड़ी पहल है, जिसे पत्रिका के इनसाइट कवर के रूप में शामिल किया गया है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।